नमस्कार भारत, तारीख 21 नवंबर दिन मंगलवार, मैं हूँ वात्सल्य राय। अमेरिका आज उत्तर कोरिया के खिलाफ करेगा नए प्रतिबंधों का ऐलान। चरमपंथ का समर्थन करने वाले देशों की सूची में दोबारा किया शामिल।
Today, the United States is designating North Korea as a state sponsor of terrorism.
एक खास रिपोर्ट, म्यांमार के रखाइन प्रांत में किस हाल में है रोहिंग्या हिंदू।
डरे हुए है वो जो मुसलमानों को जिस तरह दबाव देते हैं, अगर ये दबाव हम लोगों को पर भी आ जाए बहुत बुरा होगा हाल।
और झारखंड में दो वक्त की रोटी जुटाने के लिए मजदूरी को मजबूर, देश के लिए स्वर्ण जीत चुके एक तीरंदाज।
पहले तो मनरेगा में काम करते थे, मेट का काम कर रहे, उसमें मजदूरी 150 ही मिलता है।
खबरें और भी, लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार मानसी दास से। अमरीका ने उत्तर कोरिया की किम जोंग उन सरकार पर परमाणु कार्यक्रम पर रोक लगाने का दबाव बनाने की कोशिश में बीते कल उत्तर कोरिया को चरमपंथ का समर्थक यानी स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म घोषित कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि इसके बाद उत्तर कोरिया पर और कड़े प्रतिबंध लगाए जाएंगे। इधर अमरीकी विदेश मंत्री रेक्स टिलरसन का कहना है कि उन्हें अब भी उम्मीद है कि इस संकट का कोई कूटनीतिक हल निकल सकता है। लेबनन के हिजबुल्ला आंदोलन के नेता हसन नसरल्ला ने उनके संगठन पर लगे आतंकवाद का समर्थन करने के आरोपों से इनकार किया है। सऊदी अरब और उनके अरब सहयोगियों ने हिजबुल्ला पर मध्य पूर्व में संघर्ष की स्थिति को और गंभीर बनाने का आरोप लगाया था। नसरल्ला ने एक भाषण में इस बात से साफ तौर पर इनकार किया कि उनके संगठन ने यमन में हूती विद्रोहियों को मिसाइलें मुहैया करवाई हैं और इन मिसाइलों को सऊदी अरब पर गिराया गया है। मैं इस बात की पुष्टि करता हूं और वो लोग चाहें तो इस बात की जांच कर लें कि हमने सऊदी अरब पर हमला करने के लिए कोई बैलिस्टिक मिसाइल, कोई आधुनिक हथियार, कोई बंदूकें नहीं दी। मैं आधिकारिक तौर पर इस बात से इनकार करना चाहता हूं कि हमने यमन, बहरीन, कुवैत और इराक के लिए भी कोई हथियार नहीं भेजे हैं। लेबनन के हिजबुल्ला आंदोलन के नेता हसन नसरल्ला के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। अर्जेंटीना की नौसेना का कहना है कि दक्षिणी अटलांटिक में लापता अर्जेंटीना की पनडुब्बी की तलाश के काम पर लगे दो जहाजों को अपने सोनार उपकरणों पर जो आवाजें मिली थीं वो लापता पनडुब्बी की नहीं है। 44 सदस्यों के यात्रियों के साथ अर्जेंटीना की इस पनडुब्बी ने 5 दिन पहले बिजली की समस्या के बारे में खबर दी थी और वापस बेस की तरफ आ रही थी, जब वो रास्ते से ही गायब हो गई। मार दिल प्लाता नौसेना अड्डे पर खुआन कार्लोस मेंडोजा अपने बेटे को लेकर चिंतित हैं, जो पनडुब्बी में हैं। उम्मीद करता हूं कि पनडुब्बी में जरूरत के मुताबिक ऑक्सीजन हो, क्योंकि मुझे बताया गया है कि उनके पास और 2 दिन के लिए ही ऑक्सीजन था। मुझे कुछ नहीं पता, मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि वो यानी मेरा बेटा वहां हो। अपने बेटे की चिंता करते खुआन कार्लोस मेंडोजा। भारत के दलवीर भंडारी द हेग में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में दोबारा चुन लिए गए हैं। संयुक्त राष्ट्र जनरल असेंबली ने भारत के प्रतिनिधि भंडारी का समर्थन किया, जिसके बाद ब्रिटेन ने अपना नामांकन वापस ले लिया। ब्रिटेन को उम्मीद थी कि उनके मौजूदा प्रतिनिधि को दूसरे कार्यकाल के लिए भी चुन लिया जाएगा। कूटनीतिक मामलों पर नजर रख रहे बीबीसी संवाददाता का कहना है कि इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ब्रिटेन की कमजोर स्थिति के रूप में देखा जा रहा है। ये संयुक्त राष्ट्र में शक्ति के संतुलन में बदलाव की ओर भी इशारा करता है। हाल में सुरक्षा परिषद ने ब्रितानी जज का समर्थन किया था। जिम्बाब्वे की सेना का कहना है कि राष्ट्रपति रॉबर्ट मुगाबे अपने पूर्व सहयोगी और पूर्व उपराष्ट्रपति इमरसन मनंगावा के साथ लगातार संपर्क में हैं। 2 सप्ताह पहले मुगाबे ने मनंगावा को बर्खास्त कर दिया था, जिसके बाद सेना ने सत्ता पर कब्जा कर मुगाबे को नज़रबंद कर लिया था। इसके बाद सत्ताधारी जानू पीएफ पार्टी ने मुगाबे को पार्टी प्रमुख के पद से बर्खास्त कर मनंगावा को उनके स्थान पर चुन लिया था। 93 साल के मुगाबे बीते 37 साल से जिम्बाब्वे का नेतृत्व कर रहे हैं। जर्मनी की चांसलर एंगेला मर्केल ने कहा है कि वो चाहेंगी कि अल्पमत सरकार का नेतृत्व करने की बजाय देश में दोबारा चुनाव कराए जाएं। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी से दिन की पहली सभा नमस्कार भारत सुन रहे सभी श्रोताओं को वात्सल्य राय का नमस्कार। ये कार्यक्रम आप रेडियो के साथ साथ bbchindi.com मोबाइल और फेसबुक पर भी सुन सकते हैं लाइव। दुनिया के हर हिस्से में हर सुबह हर कोई नई उम्मीद लिए आंखें खोलता है, लेकिन इसी दुनिया में कई हिस्से ऐसे हैं जहां तमाम आंखों में सिर्फ नाउम्मीदी दिखती है, सवाल दिखते हैं। ऐसी ही एक जगह है म्यांमार का रखाइन प्रांत, जहां के रोहिंग्या मुसलमानों के दर्द की कहानी 3 महीने से पूरी दुनिया सुन रही है, लेकिन वहां हिंदू किन सवालों से जूझ रहे हैं, हम आज बीबीसी संवाददाता नितिन श्रीवास्तव की ग्राउंड रिपोर्ट में यही बताएंगे। उधर सवालों से जर्मनी भी जूझ रहा है, लेकिन उस सवाल का मिजाज थोड़ा जुदा है। जर्मनी में सितंबर में हुए चुनाव के बाद से ही राजनीतिक अनिश्चितता की स्थिति बनी हुई है। जर्मनी की चांसलर एंगेला मर्कल का ब्लॉक और फ्री लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी यानी FDP के बीच 4 हफ्ते तक गठबंधन की बातचीत चली, लेकिन रविवार को FDP बातचीत से अलग हो गई और अब मर्केल दोबारा चुनाव की बात करने लगी हैं। उनका क्या कहना है ये सुनिए। एंगेला मर्केल कह रही थी कि एक स्थिर देश के लिए, एक ऐसे देश के लिए जिसके सामने कई चुनौतियां हैं, अल्पमत वाली सरकार के विकल्प को बेहद सावधानी से देखना होगा। मुझे लगता है कि नए सिरे से चुनाव कराना बेहतर समाधान होगा। राजनीतिक अनिश्चितता और सवाल जिम्बाब्वे के सामने भी हैं, लेकिन जिम्बाब्वे के सेना प्रमुख कॉन्स्टेंटिनो चिवेंगा का कहना है कि सेना मुश्किलों में घिरे राष्ट्रपति रॉबर्ट मुगाबे के साथ बातचीत कर रही है जिससे संकट का हल निकाला जा सके। सेना प्रमुख ने कहा,
वी हैव मेड फर्दर कंसल्टेशन विद द प्रेसिडेंट टू एग्री ऑन ए रोड मैप।
सेना प्रमुख चिवेंगा कह रहे थे कि हमने देश की स्थिति को लेकर राष्ट्रपति के साथ बातचीत की है ताकि एक रोडमैप पर सहमति बन सके। नए घटनाक्रम को लेकर सुरक्षा बल उत्साहित हैं। इसमें राष्ट्रपति और पूर्व उपराष्ट्रपति कॉमरेड एमरसन मैनन गुआवा के बीच संपर्क कराना शामिल है जिनके जल्दी ही देश लौटने की संभावना है। एशिया, यूरोप और अफ्रीका के बाद अमरीका की बात करें तो अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल एक ऐसे सवाल का जवाब दिया जिसके संकेत वो लगातार देते रहे थे। ट्रंप ने बताया कि उत्तर कोरिया को चरमपंथ का समर्थन देने वाले देशों की सूची में दोबारा शामिल कर दिया गया है। 9 साल पहले उत्तर कोरिया को इस सूची से बाहर कर दिया गया था। उत्तर कोरिया के खिलाफ नए प्रतिबंधों का ऐलान आज किया जाएगा। पूरे मामले पर ज्यादा जानकारी दे रही हैं बीबीसी संवाददाता मानसी दास।
बीते कुछ वक्त से अमेरिका और उत्तर कोरिया के बीच तनाव जारी है। अमेरिका चाहता है कि उत्तर कोरिया अपने परमाणु कार्यक्रम पर रोक लगाए, लेकिन उत्तर कोरिया ऐसा करने से साफ तौर पर इनकार करता रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बीते कल एक बार फिर कहा कि उत्तर कोरिया की सरकार को विधिसम्मत तरीके से काम करना चाहिए और अपने परमाणु कार्यक्रम पर रोक लगानी चाहिए। साथ ही उन्होंने उत्तर कोरिया को चरमपंथ का समर्थन यानी स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म करने वाले देशों की सूची में दोबारा शामिल करने का ऐलान किया।
We will be instituting a very critical step and that'll start right now. Today the United States is designating North Korea as a state sponsor of terrorism.
हम आज एक बेहद अहम कदम उठाने जा रहे हैं और वो भी हम इसी वक्त करने वाले हैं। आज अमेरिका उत्तर कोरिया को चरमपंथ का समर्थन करने वाले देशों की सूची में शामिल कर रहा है। ये काफी वक्त पहले, सालों पहले कर दिया जाना चाहिए था। दुनिया को परमाणु हमला करने की धमकी देने के अलावा उत्तर कोरिया अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चरमपंथ की कार्रवाई के समर्थन के लिए और विदेशी धरती पर हत्याओं के लिए भी जिम्मेदार है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शब्द। इसी साल सितंबर में जब उत्तर कोरिया ने अपना 6ठा परमाणु परीक्षण किया तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने उत्तर कोरिया पर नए प्रतिबंध लगाए, पर उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन ने प्रतिबंधों को अनदेखा करते हुए परमाणु और मिसाइल कार्यक्रम जारी रखा। किम जोंग उन ने यहां तक कहा कि वो ऐसी मिसाइल विकसित करना चाहते हैं जो अमरीका तक पहुंच सके। ट्रंप और किम जोंग उन पहले भी एक दूसरे के विरोध में बयान दे चुके हैं। हाल में ट्रंप ने ट्वीट किया कि उत्तर कोरिया युद्ध की मांग कर रहा है, तो उत्तर कोरिया की ओर से जवाब आया कि अमेरिका दबाव बढ़ाना जारी रखता है तो हमें भी ठोस कार्रवाई करनी होगी। राष्ट्रपति ट्रंप ने बीते कल हुए कैबिनेट मीटिंग में कहा कि उत्तर कोरिया को चरमपंथ का समर्थक घोषित करने के बाद उस पर बड़े पैमाने पर अतिरिक्त प्रतिबंध लगाए जाएंगे। वित्त मंत्रालय उत्तर कोरिया पर और कड़े प्रतिबंध लगाने की घोषणा करेगा। ये प्रक्रिया अभी 2 सप्ताह तक चलेगी और ये अब तक लगाए गए सबसे कड़े प्रतिबंध होंगे। डोनाल्ड ट्रंप के शब्द। ट्रंप की ताजा घोषणा के बाद अब उत्तर कोरिया उन देशों की सूची में शामिल हो गया है जिन्हें लगातार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चरमपंथ को समर्थन देने वाला देश माना जाता है। ईरान, सूडान और सीरिया भी इसी सूची में शामिल हैं। साल 2008 में जॉर्ज डब्ल्यू बुश प्रशासन ने उत्तर कोरिया को इस सूची से हटा लिया था। इस दौरान उत्तर कोरिया के साथ परमाणु कार्यक्रम पर रोक लगाने पर बात हो रही थी।
रिपोर्ट सुना रही थी मानसी दास। और अब बात म्यांमार की। बीते 3 महीने में म्यांमार से भागकर बांग्लादेश आए रोहिंग्या मुसलमानों की तादाद 6 लाख से ज्यादा हो चुकी है। सितंबर में हिंसा के शिकार 100 से ज्यादा रोहिंग्या हिंदू परिवार भी म्यांमार से बांग्लादेश पहुंचे थे। म्यांमार सरकार ने इसी दौरान हिंदुओं की सामूहिक कब्र मिलने की जानकारी दी थी और इसके लिए मुस्लिम चरमपंथियों पर आरोप लगाए थे। इन दावों में कितनी सच्चाई है? म्यांमार के रखाइन प्रांत में रहने वाले हिंदू पहली बार बांग्लादेश क्यों भागे और म्यांमार में उनकी हत्याएं किसने की? बीबीसी संवाददाता नितिन श्रीवास्तव इन्हीं सवालों का जवाब ढूंढने म्यांमार के रखाइन प्रांत पहुंचे।
कुकुबाला हाल ही में फिर से मां बनी है। उनका बेटा सिर्फ 11 दिन का है लेकिन इन सभी की जिंदगी में अंधेरा है। ये रोहिंग्या हिंदू हैं और रखाइन प्रांत में इनकी आबादी 10,000 के करीब है। म्यांमार सरकार का कहना है कि मुस्लिम चरमपंथियों ने 25 अगस्त के हमले में कई हिंदुओं को मार दिया था। कुकुबालन ने बताया,
मेरे पति और मेरी 8 साल की बेटी काम के लिए दूसरे गांव गए थे। शाम को मेरी बहन के पास बंगाली चरमपंथियों का फोन आया कि दोनों की कुर्बानी दे दी गई है और हमारे साथ भी यही होगा। मुझे समझ में नहीं आया क्या करूं। मैं घर के अंदर छिपी रही और 3 दिन बाद फौज हमें यहां लेकर आई।
म्यांमार की फौज ने इसी तरह की दर्दनाक कहानियों को आधार बनाते हुए रखाइन में जारी कार्रवाई को जायज ठहराने की कोशिश की है। इस राज्य से 6 लाख से भी ज्यादा रोहिंग्या मुसलमान भागकर पड़ोसी बांग्लादेश में शरण ले चुके हैं। उन्होंने म्यांमार सरकार पर हत्याएं और बलात्कार के आरोप लगाए हैं। हिंसा की शुरुआत अगस्त में हुई थी जब मुस्लिम चरमपंथियों ने 30 पुलिस थानों पर हमला किया था। लेकिन जवाब में म्यांमार की फौज की कठोर और विशाल कार्रवाई की निंदा दुनिया भर में हुई है। संयुक्त राष्ट्र ने इसे नस्ली जनसंहार करार दिया है। रखाइन राज्य की राजधानी सितवे में करीब 700 हिंदू परिवारों को एक सरकारी रेफ्यूजी कैंप में रखा गया है। महीनों से जारी हिंसा में कुकुबाला और उनके बच्चे हाशिए पर आ चुके हैं।
अगर मेरे पति जिंदा होते तो हमारे बच्चे का नाम वही रखते। मैं क्या करूं? कहां जाऊं? मेरी बेटी और पति की लाश तक नहीं मिली है। क्या उन्हें ढूंढने में आप मेरी मदद करेंगे?
रखाइन में हिंसा भड़कने पर रोहिंग्या हिंदू कई दिशाओं में भागे थे। सितंबर में बांग्लादेश के कुतुपलोंग इलाके में मेरी मुलाकात अनिका धर से हुई थी जो म्यांमार के फकीरा बाजार की रहने वाली हैं। पति की हत्या के बाद भागी अनिका ने मुझे बताया था कि ये हत्या काले नकाब पहने हमलावरों ने की थी। काफी ढूंढने के बाद यहाँ सितवे में मुझे अनिका के जीजा मिले जिन्होंने परिवार की हत्याओं के लिए बंगाली चरमपंथियों को जिम्मेदार ठहराया। आशीष कुमार ने कहा,
हमारे शुशुर बारी
मेरी बेटी की तबीयत खराब थी इसलिए मैं उसे फकीरा बाजार इलाके में अपने ससुराल में छोड़ मुआंगडो आ गया। अनिका के पति और सास ससुर के साथ हत्यारे मेरी बेटी को जंगल ले गए और मार डाला। जब बांग्लादेश में अनिका से संपर्क हुआ तो पता चला कि उनकी हत्या किस जगह हुई।
आशीष की बेटी 8 वर्ष की थी। उन्होंने मुझे वो वीडियो दिखाया जिसको म्यांमार सरकार हिंदुओं की सामूहिक कब्र बता रही है। इन हत्याओं के महीने भर बाद आशीष उन लोगों में भी शामिल थे जिन्हें फौज अंतिम संस्कार करवाने के लिए ले गई थी। अधिकारियों का कहना है कि वहां से 28 शव बरामद हुए थे। आशीष की आंखों में आज भी खौफ दिखता है।
हम लोगों ने पहचाना,
पूरे इलाके में बदबू फैली हुई थी और घंटों हमने खुदाई की। हाथ के कड़े और गले में पहनने वाले काले लाल रेशम के धागे की वजह से मैं उसे पहचान पाया।
म्यांमार की स्टेट काउंसलर आंग सान सूची ने हाल ही में रखाइन प्रांत का दौरा कर हालात का जायजा लिया था, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने रोहिंग्या संकट मामले पर उनकी लंबी चुप्पी की कड़ी निंदा की है। इस बात को भी साबित करना नामुमकिन सा है कि इस पूरे प्रकरण में सरकार की भूमिका कितनी सही रही है। रखाइन में कौन किसके बारे में क्या कह रहा है, इस पर भरोसा करना बहुत मुश्किल है। खुफिया एजेंसियों की निगाहें सब पर रहती हैं, जिसमें हम भी शामिल थे। लेकिन एक बात साफ है, रोहिंग्या मुस्लिमों की तरह अपने घर और करीबी रिश्तेदार गंवाने वाले इस प्रांत के हिंदू नागरिक एकाएक बड़ी हिंसा के बीच पिस कर रह गए दिखते हैं। इस बात में भी कोई शक नहीं कि सरकार से मिलती मदद के चलते रोहिंग्या हिंदुओं को उनसे जोड़कर देखा जाता रहा है। एक दोपहर मैं अपने ऊपर नजर रखने वालों से बचते बचाते कुछ रोहिंग्या हिंदुओं से मिलने गया। उन्हें खुलकर बात करने में बिल्कुल देर नहीं लगी।
एक बात मुझे बताइए कि हिंदू इतने डरे हुए क्यों हैं?
डरे हुए हैं वो जो मुसलमानों को जिस तरह दबाव देते हैं, अगर ये दबाव हम लोगों को पर भी आ जाए
गवर्नमेंट
तो बहुत बुरा होगा हाल। और ये ग्रीन कार्ड से भी जॉब नहीं मिलता,
ग्रीन कार्ड से जॉब नहीं
मिलता। ये ना
खौफ हर जगह दिखता है, चाहे सितवे से लेकर यांगोन तक खौफ हर जगह दिखता है। चिया विन रोहिंग्या मुस्लिमों के हित की बात करने वाले लीडर हैं और सांसद भी रह चुके हैं। उन्हें म्यांमार सरकार के दावों पर शक है जिसमें कहा गया कि सामूहिक कब्र में मिले लोगों की हत्या मुस्लिम चरमपंथियों ने की है। चाविन ने कहा,
रखाइन में आरसा ग्रुप से संबंधित मुस्लिम चरमपंथी अवैध हैं और गलत गतिविधियों में भाग लेते हैं। अगर इन जघन्य हत्याओं में उनका हाथ है भी, तब भी उनके पास इतना समय कहाँ होगा कि वारदात के बाद कब्रें खोदें और फिर उन्हें ढकें। ये लोग हमेशा भाग रहे होते हैं और छिप रहे होते हैं।
उधर म्यांमार की सरकार इन दावों को खारिज करती है कि रखाइन में रहने वाले रोहिंग्या हिंदू सरकार और चरमपंथियों दोनों के खौफ में जी रहे हैं। सरकार उन्हें बचाने के साथ साथ सही पहचान होने पर उन्हें नागरिकता देने के दावे की भी बात करती है। देश के केंद्रीय मंत्री विन म्यात आय ने बीबीसी हिंदी से कहा,
रखाइन में हिंसा से बहुत लोग प्रभावित हुए हैं और चरमपंथियों ने हिंदुओं को भी मारा। मुझे नहीं पता कुछ बांग्लादेश क्यों भागे, शायद डर के चलते इधर उधर भाग गए थे, लेकिन अब वे वापस आ गए हैं।
उधर अनिका धर अब म्यांमार लौट आई हैं। उनका बच्चा अब अस्पताल में पैदा हो सकेगा, लेकिन कुकुबाला और उनके तीन बच्चों के लिए मुश्किलें कम नहीं। हमारी मुलाकात के कुछ दिन बाद उन्हें उनके गांव वापस भेज दिया गया। रखाइन में हालात अभी भी चिंताजनक हैं। शायद इसीलिए कुकुबाला को भी नहीं पता कि अगर अगला हमला हुआ तो कौन करेगा। नितिन श्रीवास्तव, बीबीसी, सितवे, म्यांमार।
नितिन श्रीवास्तव की रिपोर्ट पर आप अपनी राय हमारे साथ जरूर साझा करें। और अब वक्त है दिल्ली से छपे अखबारों की सुर्खियां जानने का। मानसी तैयार हैं अखबारों के साथ। जी मानसी,
शुरू कर रही हूँ इंडियन एक्सप्रेस में छपे कार्टून से। उन्नी का कार्टून है और जो आपको पता होगा हाल में अंडों की कीमत बहुत बढ़ गई है।
जी जी।
इसी पर कार्टून है, लिखा हुआ है कि खाद्य मंत्रालय ने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को चिट्ठी लिखी है और कहा है कि अंडा मुक्त और प्याज मुक्त फूड शो दिखाने के लिए बोला जाए।
जी।
और एक खबर हिंदुस्तान टाइम्स से, कांग्रेस के राहुल युग की शुरुआत होने वाली है। इस खबर को पहले पन्ने पर हिंदुस्तान टाइम्स ने छापा है। अखबार के अनुसार कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने सोमवार को राहुल गांधी को पार्टी की अध्यक्षता देने का फैसला ले लिया है और इसके बाद अब राहुल गांधी 5 दिसंबर तक पार्टी प्रेसिडेंट का पद संभाल सकते हैं।
चुनाव होगा 1-4 के बीच।
जी। और इसके बाद अखबार में एक और खबर छपी है कि गुजरात में कांग्रेस और पाटीदार नेताओं के बीच बात नहीं बन रही है और सुलह की जगह अब संग्राम छिड़ गया है। अखबार लिखता है कि सहमति के बिना अपने दो नेताओं को टिकट दिए जाने पर पाटीदार नेताओं ने कांग्रेस से कड़ा एतराज किया, जिसके बाद कांग्रेस ने 13 उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी की। जनसत्ता में छपी एक खबर के अनुसार चीन ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अरुणाचल प्रदेश यात्रा पर आपत्ति जताई है। राष्ट्रपति ने रविवार को अरुणाचल प्रदेश की यात्रा की थी। अखबार के अनुसार चीन का कहना है कि भारत को ऐसे समय में सीमा विवाद को जटिल बनाने से बचना चाहिए जब द्विपक्षीय संबंध निर्णायक मोड़ पर हों, और मामले में भारत का कहना है कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न अंग है और भारतीय नेता जैसा अन्य राज्य की यात्रा करने के लिए जितने स्वतंत्र हैं उतना ही अरुणाचल प्रदेश की यात्रा करने के लिए भी। इंडियन एक्सप्रेस के पहले पन्ने पर खबर है पद्मावती फिल्म की, जिसके मामले में आपत्तिजनक दृश्य हटाने की मांग करने वाली एक याचिका की सुनवाई करने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है।
फिल्म लगातार खबरों में बनी हुई है, शुक्रिया मानसी। अगली खबर झारखंड से। जमशेदपुर के पास एक गांव में चैंपियन तीरंदाज अशोक सोरेन रहते हैं। उन्होंने भारत के लिए तीरंदाजी मुकाबलों में कई मेडल हासिल किए हैं, लेकिन फिलहाल मुश्किलों से जूझ रहे अशोक को घर चलाने के लिए मजदूरी करनी पड़ रही है। सुनिए हमारे साथी रवि प्रकाश की यह रिपोर्ट।
यह इस दौर की खौफनाक हकीकत है कि हम अपनी प्रतिभाओं को सहज नहीं पा रहे। यह कहानी अशोक सोरेन की है जो देवघर गांव में रहकर मनरेगा की मजदूरी करते हैं। उनका गांव जमशेदपुर से 6 किलोमीटर दूर भिलाई पहाड़ी के पास है। उन्होंने साल 2008 में जमशेदपुर में आयोजित दक्षिण एशियाई देशों की तीरंदाजी प्रतियोगिता में भारत के लिए 3 स्वर्ण पदक हासिल किए थे। तब उनकी उम्र महज 19 साल थी, लेकिन अब घर चलाने के लिए उन्हें मनरेगा में मजदूरी करनी पड़ रही है। पिछले 3 सालों से मजदूरी कर रहे अशोक इन दिनों मनरेगा के मेट हैं। अशोक सोरेन ने BBC को बताया।
जो मेडल है 2007 में यहाँ जमशेदपुर में हुआ था, साउथ एशियन आर्चरी चैंपियनशिप, उसमें जीते थे गोल्ड। इसके अलावा जीते थे नेशनल गेम हुआ स्टेट में, उसी में जीते थे। जो गैंगटॉक में हुआ था सिक्किम, पहले तो मनरेगा में काम करते थे 14 के आसपास तक किए। इसके बाद इधर काम किए 13-14, इधर 15-16 मेट का काम कर रहे, उसमें मजदूरी 185 मिलता है।
अशोक सोरेन अब तीरंदाजी नहीं करते, उन्होंने खेलना छोड़ दिया है। उन्होंने साल 2006 में राज्य स्तरीय जूनियर तीरंदाजी प्रतियोगिता में रजत और साल 2007 में इसी लेवल की सीनियर तीरंदाजी प्रतिस्पर्धा में 1 स्वर्ण और 2 रजत पदक जीते थे। इसके अलावा गंगटोक में आयोजित नेशनल आर्चरी चैंपियनशिप में उन्हें कांस्य पदक मिला, लेकिन बचपन में ही पिताजी को खो चुके अशोक की माँ कंसावती देवी का साल 2008 में निधन हो जाने के बाद वे पूरी तरह टूट गए। पिताजी के निधन के बाद चाचा सुनाराम सोरेन ने अशोक सोरेन और उनके भाई बहनों को पाला पोसा। उन्होंने BBC को बताया कि अशोक को सरकार से कोई सहायता नहीं मिली। सुनाराम सोरेन ने BBC से कहा,
छोटा था उसी समय, ऐसे छोटा था, करीब 8 साल जैसा था, सरकार से हम क्या मिलेगा, जो भी मिलेगा हमसे क्या मांगेगा, जो मिलेगा वही लेगा।
अशोक सोरेन ने अपने बड़े भाई को देखकर बचपन में ही तीरंदाजी शुरू कर दी। बड़े होने पर टाटा स्पोर्ट्स अकादमी में उन्होंने तीरंदाजी की औपचारिक ट्रेनिंग ली। यहीं पर उनकी मुलाकात कुछ नामी तीरंदाजों से हुई और पहले स्टेट फेडरेशन टीम में उनका सेलेक्शन हो गया। अपने छोटी से करियर के दौरान उन्होंने कई मेडल झटके। यह सिलसिला आज भी जारी रहता अगर उनके कंधों पर घर चलाने की जिम्मेवारी नहीं होती। कम उम्र में ही उन्हें पैसे कमाकर अपनी बहनों की शादी करनी पड़ी और अब भाई को पढ़ाने के लिए वे मजदूरी कर रहे हैं। दरअसल झारखंड में कई ऐसे खिलाड़ी हैं जिनके दीवारों पर मेडल तो टंगे हैं, लेकिन उनके बर्तन को खाने लायक चावल भी नसीब नहीं। काश सरकार इनका दर्द समझती तो ऐसी प्रतिभाएं देश के लिए और मेडल ला रही होती। रवि प्रकाश, BBC के लिए जमशेदपुर में।
आगे बढ़ते हैं। अभिनेता प्रकाश राज ने पत्रकार गौरी लंकेश की हत्या के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल पूछे तो सोशल मीडिया पर उन्हें निशाना बनाया गया। हालांकि प्रकाश राज का कहना है कि वो सवाल पूछना बंद नहीं करेंगे। क्या है वो सवाल जो वो उठाना चाहते हैं, सुनिए इमरान कुरैशी की इस रिपोर्ट में।
प्रकाश राज उर्फ प्रकाश राय बहुत ही स्पष्ट लफ्जों में बात करते हैं। जब गौरी लंकेश की हत्या हुई तो उनकी उम्मीद के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ नहीं कहा था। उनके सवालों का जवाब प्रधानमंत्री की ओर से नहीं आया और उन्हें सोशल मीडिया पर सिर्फ ट्रोल किया गया, और वो बहुत ही बुरी तरह के ट्रोल्स थे। लेकिन प्रकाश राज को उनसे कोई आपत्ति नहीं है, तो हमने उनसे सवाल पूछा कि अभी तक जो कुछ हुआ है उससे क्या वह देश के प्रधानमंत्री का कम सम्मान करने लगे हैं। प्रकाश राज ने कहा,
हाँ जी, बहुत सारे चीजों में कम हुई है, इसके बाद का बोल रहा हूँ। उनकी जो गवर्नमेंट है, उनका जो पॉलिसी डिसीजन है, आई थिंक इट इज जस्ट एन इफेक्ट। उनका इंटेंशन शायद ठीक होगा, लेकिन जो प्रैक्टिस में ले आए, कुड बी जीएसटी, कुड बी डीमोनेटाइजेशन, कुड बी इस देश में जो आतंक फैला रहे हैं उनके लोग, कुछ लोग कुछ जिसमें उनके लोग, तो आई एम लूजिंग माई, मेरा जो इज्जत था तो कम हो रहा है, वो हक है मुझे उसको एक्सप्रेस करने का। जब तक आप जवाब नहीं देंगे तो मेरा शंख ज्यादा बढ़ता ही रहेगा।
प्रकाश राज पिछले कुछ हफ्तों से हस्तनिर्मित उत्पादों पर कोई जीएसटी नहीं लगाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन रेटिंग एजेंसी मूडीज ने भारत की रेटिंग बढ़ाने में जीएसटी को भी अहम माना है। तो प्रकाश राज ने इस मामले में कहा,
दुनिया में देश का रेटिंग अच्छा है, मूडी का रेटिंग आ चुका है, अच्छी बात है, ताकि हमको टेकिंग लोन्स इन वर्ल्ड बैंक्स उसके कुछ उनके भरोसा आ चुका है। बट प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये बिगर इंडस्ट्रियल सेक्टर्स, बिगर कंपनीज का रेटिंग है, बट मैं क्या बोल रहा हूँ, रूरल इकोनॉमी जो है उस पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है, ये लोग मरने वाले हैं, आप इसका भी सोचो। हाँ, बहुत अच्छी बात है, इस दुनिया के सामने हमारा कुछ बड़ा है, बट अंदर के, घर के अंदर के बात करो, ऐसे नहीं कि यू जस्ट पुट इट समथिंग अंडर द मैट के अंदर लगा के दुनिया को दिखाने के लिए नहीं जीना है भाई।
संजय लीला बंसाली की फिल्म पद्मावती पर जारी विवाद से भी वो खफा हैं। प्रकाश राज नाराज हैं कि गला काटने की धमकी दी जा रही है।
आप क्यों नहीं रोक रहे उन लोगों को? अरे, एक आदमी सोचता है फिल्म बनाने का, फिल्म का शूटिंग ही शुरू नहीं है, जाके डायरेक्टर को मारते हैं आप लोग, और दो महीने के बाद उनका सेट्स को आग लगाते हैं आप, और आप बोल रहे हैं हमारा ही एक सेंसर बोर्ड रहेगा। ऐसे एम्बियंस कैसे छा चुका है इस देश में? इसका कारण कौन? जो पालन कर रहे हैं वही लोग है ना, आतंक है तो पूछता हूँ, जवाब दो भाई।
तो इसके लिए क्या आप प्रधानमंत्री को जिम्मेदार ठहराते हैं?
जी, जब मैं जीएसटी के बारे में बात करता हूँ तो मैं फाइनेंस मिनिस्टर से बात करता हूँ, आप क्यों मोदी से? क्या मुझे एक बोलिए, आप ऐसे जो सवाल पूछ रहे हैं, क्या इस देश की हर जो डिसीजन सरकार की होता है वो मोदी जी का है? तो बता दीजिए, तो मैं मोदी से बोला, मोदी जी से सवाल पूछता हूँ।
बीबीसी हिंदी से बातचीत में प्रकाश राज फिर से स्पष्ट कर देते हैं कि वो राजनीति में नहीं उतरेंगे, लेकिन वो सवाल पूछना नहीं बंद करेंगे, क्योंकि वो देश का नागरिक होते हुए इसको अपना हक मानते हैं। वो कहते हैं कि जब तक सवाल पूछा जाता है तब तक लोकतंत्र जिंदा रहता है। इमरान कुरैशी, बीबीसी बेंगलुरु।
और अब सुन लेते हैं खेल की खबरें।
खेल समाचारों के साथ मैं सूर्यांशी पांडे। सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं बैडमिंटन के कोर्ट पर। हांगकांग में आज से शुरू होने जा रही है हांगकांग ओपन सुपर सीरीज, जिसमें भारत की तरफ से महिला वर्ग में मेजबानी करेंगी पीवी सिंधु और साइना नेहवाल, तो वहीं पुरुष में एचएस प्रणय, पीएस प्रणीत हिस्सा ले रहे हैं। खबर क्रिकेट के मैदान से। कल यानी सोमवार को भारत और श्रीलंका के बीच कोलकाता में खेला गया सीरीज का पहला टेस्ट ड्रॉ रहा। श्रीलंका को 231 की लीड देने के बाद भारत के तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार, मोहम्मद शमी और उमेश यादव ने श्रीलंकाई टीम के 7 विकेट चटकाए और मात्र 26 ओवर में 75 रन पर श्रीलंकाई टीम को रोके रखा, लेकिन खराब रोशनी के कारण मैच कुछ समय पहले रोकना पड़ा और मैच ड्रॉ रहा। भारतीय तेज गेंदबाजों के प्रदर्शन पर बात कर रहे हैं वरिष्ठ खेल पत्रकार और क्रिकेट एक्सपर्ट विजय लोकपल्ली।
पहली इनिंग में भी 4 विकेट भुवनेश्वर को मिले, 4 विकेट मोहम्मद शमी को मिले और 2 विकेट उमेश यादव को। इस सीरीज में कंसंट्रेशन फास्ट बॉलर्स पे ही है, क्योंकि इसके बाद आपको जाना है साउथ अफ्रीका, बड़ा कठिन दौरा है। उनकी कोशिश यही है टीम मैनेजमेंट की कि ऐसे फ्रेम ऑफ माइंड से जाए वहाँ पे जिसमें आपके पास 3 या हो सकता 4 फास्ट बॉलर्स आपको एक मैच में खिलाने पड़ेंगे।
भारत बनाम श्रीलंका का दूसरा टेस्ट मुकाबला नागपुर में 24 नवम्बर से खेला जाना है।
विदा लेने के पहले मुख्य समाचार एक बार फिर मानसी दास से।
बीबीसी समाचार। अमेरिका ने बीते कल उत्तर कोरिया को चरमपंथ का समर्थक यानी स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म घोषित कर दिया है। भारत के दलवीर भंडारी दी हेग में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में दोबारा चुन लिए गए हैं। जर्मनी की चांसलर एंगेला मर्केल ने कहा है कि वो चाहेंगी कि अल्पमत सरकार का नेतृत्व करने की बजाय देश में दोबारा चुनाव कराए जाएं। जिम्बाब्वे की सेना का कहना है कि राष्ट्रपति रॉबर्ट मुगाबे अपने पूर्व सहयोगी और पूर्व उपराष्ट्रपति इमरसन मनंगावास के साथ लगातार संपर्क में हैं। बीबीसी समाचार।
नमस्कार भारत में आज इतना ही। स्टूडियो का संचालन किया शाकिर आलम ने, फेसबुक लाइव आप तक पहुंचाया गुरप्रीत ने। शाम 7:30 बजे दिन भर में होगी आपसे अगली मुलाकात। तब तक देश दुनिया की खबरों के लिए आपके साथ है bbchindi.com का पन्ना। वात्सल्य राय को दीजिए अनुमति। नमस्कार।